अदर मैन सेक्स इन्फेचुएशन की एक कामोत्तेजक कहानी है, एक नवविवाहिता की जो परिस्थिति जनित वासना के आगे विवश होकर एक गैर मर्द की बाहों में जाने का निर्णय ले लेती है। आदित्य और दीपाली के विवाह को अभी एक वर्ष भी नहीं हुआ था। दीपाली का रूप रंग हमेशा आदित्य के दिल और दिमाग पर छाया रहता था। दूध में केसर मिला जैसा रंग, उसकी 36, 28, 34 की फिगर और मस्त कर देने वाली कामुकता से आदित्य की तबीयत में हमेशा बेचैनी रहती थी। हालांकि आदित्य और दीपाली जी भर के जवानी के सेक्स के रोमांस के मज़े ले रहे थे, लेकिन फिर भी आदित्य जब भी ऑफिस में होता, दीपाली की छवि उसकी आंखों के सामने तैरती रहती। जैसे ही कुछ पल फुर्सत के मिलते, वह दीपाली के साथ पिछली रात की जुदाई के बारे में सोचने लगता। तरह तरह के कामुक विचार उसको हमेशा घेरे रहते। कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे को बेइंतहा चाहते थे, एक दूसरे की प्राकृतिक ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखते थे और एक दूसरे के सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। टिंग टोंग, दीपाली नहाने जा रही थी। उसने अपना गाउन उतारकर धोने में डाल दिया था। ब्रा और पैंटी में ये सोचते हुए दरवाजे की ओर दौड़ी कि लंच ब्रेक में आने वाला आदित्य आज 11 बजे ही आ गया। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो भौचक्की रह गई। सामने आदित्य नहीं बल्कि ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाला मकान मालिक वैभव था। वैभव एक 35 वर्षीय कसरती बदन वाला आकर्षक युवक, 6 फुट लंबा, चौड़ा सीना, गोरा, किसी भी महिला को आकर्षित कर सकता था। आज तक वैभव और दीपाली ने कभी एक दूसरे को कामुक नजरों से नहीं देखा था, पर अभी परिस्थितियां दूसरी थी। दीपाली के खिलते हुए यौवन को देखकर वैभव का लंड भी करवट ले रहा था। दीपाली से ये गलती भी इसलिए हुई कि मकान मालिक वैभव ने भी आदित्य की तरह ही 2 बार घंटी बजा दी। उसको ये ध्यान नहीं रहा कि वह दरवाज़ा खोलने से पहले कुछ पहन ले, क्योंकि वो लोग आदित्य की नौकरी के कारण ही पहली बार जयपुर शहर में आए थे और वहाँ उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। सामान्यतः दिन में आदित्य को छोड़कर कोई आता ही नहीं था। जब दीपाली को अपनी अर्धनग्न स्थिति का ध्यान आया तो वह अंदर भागी और नया गाउन पहन के आई। उसने आकर वैभव से नजरें चुराते हुए पूछा, कहिए वैभव जी, कैसे आना हुआ? वैभव ने कहा, अरे आदित्य सर का फ़ोन आया था, उनको ऑफिस के काम से जोधपुर जाना पड़ गया है। तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे तुमको सूचना देने को बोला था। दीपाली ने कहा, ओह फ़ोन बंद हो गया, मैंने चार्ज करने के लिए लगा दिया था पर ऑन करना भूल गई। वैभव सीढ़ी की ओर बढ़ा और उतरने से पहले मुस्कुराते हुए बोला, दीपाली यार, दरवाज़ा खोलने से पहले थोड़ा तो ध्यान रख लिया करो। और फिर शरारत से आँख मार दी। दीपाली झेपती हुई बोली, जी हां, इनका ध्यान रखूंगी। वैभव नीचे चला गया और दीपाली दरवाज़ा पुनः बंद करके अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को सामान्य करने के लिए बिस्तर पर जा लेटी। उसे बार बार वैभव के उस अर्धनग्न बदन का जायजा लेती हुई आंखें याद आ रही थी, जो दरवाज़ा खुलने पर उसके मादक जिस्म को निहार रही थी। वैभव ने तो आँखों ही आँखों में उसकी ब्रा और पेंटी तक उतार दी थी। कह सकते हैं कि उसने आँखों ही आँखों में दीपाली के संग मनमर्जियाँ कर ली थी। अजीब बात यह थी कि दीपाली को भी अपनी चूक पर शर्मिंदगी कम और सनसनी अधिक महसूस हो रही थी। उसके लिए ये नया अनुभव था, एक गैर मर्द द्वारा उसके अधरंगे शरीर को निहारे जाना। कुछ समय बाद उसने आदित्य को फ़ोन लगाया। घंटी की आवाज़ सुनते ही वह और चुदाई के मूड में आ चुकी थी। यूं भी उसकी चुदाई नियम से हो ही जाती थी। आज बिना आदित्य के लंड वह रात को सो कैसे पाएगी? उसने आदित्य बोला भी कि मुझे रात को तुम्हारा लंड लिए बिना चैन कैसे मिलेगा। इस पर आदित्य ने कहा, अब यार जाना ज़रूरी था, मैं आकर तेरा कोटा पूरा कर ही दूंगा। तो दीपाली ने उखड़े स्वर में कहा, भोजन समय पर चाहिए, 4 दिन का खाना 1 दिन में कैसे खाऊंगी, और फ़ोन काट दिया। दीपाली की तबीयत बड़ी अनमनी सी हो रही थी। उसको लग रहा था जैसे वैभव की आंखों के आगे चुंबक से उसकी जान निकाल दी हो। फिर भी नहाना तो था, जैसे तैसे नहाने के लिए उठी। अब जाकर निकली तो उसको भूख तो लग रही थी, लेकिन उसका खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। किसी महिला को केवल खुद के लिए खाना बनाना पसंद नहीं आता। सोच रही थी कि अगर खाना नहीं बनाती तो फिर लंच में क्या खाऊंगी। इतने में नीचे से आवाज़ आई, अरे दीपाली। दीपाली ने जवाब दिया, जी कहिए। तो वैभव ने कहा, अरे यार मेरा भी खाना बना लेना, मिसेज मायके गई हुई है। दीपाली जैसे चैतन्य हो उठी, उसका शरीर एकाएक अजीब से उत्साह से भर गया। फटाफट सब्जी काटने लगी और बाद में खाना बनाने लगी। उसे अचानक ऊर्जा सी कैसे आ गई, ये सवाल उठा। जवाब में फिर उसको वैभव की और उसके अर्धनग्न जिस्म की निहारते मुग्ध आंखें याद आ गई। खाना बना के उसने वैभव का खाना टिफिन में पैक किया और नीचे देकर आने के लिए उतरी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, सांसों में तपन महसूस हो रही थी, उसका रक्त संचार तेज होने लगा था। सुबह के कुछ लापरवाह पलों ने उसके मन तन में हलचल मचा दी थी। दीपाली ने खाना वैभव की डाइनिंग टेबल पर रखा और जाने लगी तो वैभव ने आवाज़ लगाई, अरे दीपाली सुनो तो सही। तो दीपाली ने कहा, आदित्य का फ़ोन आने वाला है, मैं बाद में आती हूँ, और सरपट बाहर निकल गई। सुबह का दृश्य और वैभव की ललचाई नज़रें उसके दिमाग से निकल ही नहीं पा रही थी। दिमाग में खाना खाने के बाद वो सोने के लिए लेटी, लेकिन कुछ समय तक उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आते रहे। ऐसे ही ख्यालों में खोई हुई पता नहीं कब आँख लग गई। दीपाली सो कर उठी तो उसकी तबीयत बेचैन थी, उससे लगा कि ठीक से नींद नहीं आई, शरीर को आराम पहुंचाने के स्थान पर थकावट होने लगी। इतने में नीचे से वैभव की आवाज आई, दीपाली दीपाली नीचे आ जाओ, चाय साथ में पियेंगे। दीपाली ने कहा, जी आई। उसका ध्यान नीचे आ जाओ शब्दों पर गया और अनायासी होठों से एक मुस्कान छूट गई। चाय पीते हुए वैभव ने दीपाली को कहा, परेशान दिख रही हो। दीपाली ने कहा, जी कुछ बेचैनी सी है। इसके बाद वैभव और दीपाली चाय पीने लगे। वैभव एक टक दीपाली को निहारे जा रहा था। दीपाली वैभव से नजरें चुरा रही थी, उसे लग रहा था जैसे वैभव उसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहा है कि क्या कहे और कैसे। इतना निश्चित था कि जो कुछ भी कहेगा उसकी बेचैनी को बढ़ाने वाला ही होगा। चाय खत्म होने के बाद वैभव ने दीपाली को कहा, मैंने डिनर भी ऑर्डर कर दिया है, तुम कुछ बनाना मत, खाना नीचे साथ में खा लेंगे। दीपाली ने हामी भरी और ऊपर आ गई। शाम को उसने सोचा कि खाना तो बनाना नहीं, छत पर थोड़ी ठंडी हवा खा लूँ। छत पर मखमली अंधेरा पसर चुका था। दीपाली एक कोने में जाकर ठंडी हवा के झोंकों का आनंद लेने लगी। इतने में छत के दूसरे कोने में उसकी नज़र पड़ी। वहाँ वैभव टहल रहा था और एक हाथ में बार बार अपने लंड को सहला भी रहा था। दीपाली को लगा कि वैभव को भी सुबह के दृश्य ने अब तक जकड़ रखा है और बेकरार किया है। दीपाली चुपके से छत से नीचे उतर आई और इंतज़ार करने लगी डिनर के बुलावे का। वह प्रकृति के इस पर पुरुष और पर श्री आकृष्ण को समझने की कोशिश कर रही थी। आमतौर पर माना जाता कि असंतुष्ट पत्नी और पत्नी की उपेक्षा के कारण काम सुख से वंचित पति इधर उधर किसी अन्य की तरफ आकर्षित हो ही जाते हैं, लेकिन दीपाली के साथ तो ऐसा नहीं था। उसने और आदित्य ने तो जी भर के एक दूसरे के देह का दोहन किया था, तभी ऐसा कैसे हो गया। उधर वैभव ने तो जैसे इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाने के चक्कर में ही था। उसे लग रहा था जैसे कुदरत ने उसे मौका दे दिया है, जिससे वह दीपाली जैसे तरोताज़ा फल का स्वाद ले सकेगा। दीपाली को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि शाम को छत पर टहलते हुए वैभव जानबूझकर ये सब कर रहा था, अपने लंड को सहला और दबा रहा था, क्योंकि उसने कंधकियों से दीपाली को देख लिया था और वो भी उसकी काम वासना को उत्तेजना में बढ़ाना चाहता था। शाम के 8:30 होंगे, वैभव की आवाज़ आई, दीपाली डिनर आ गया, नीचे आ जाओ। दीपाली नीचे आ जाओ का शब्द सुनकर फिर से मुस्कुरा दी। वो स्थिति का मज़ा भी ले रही थी और मन के बहकने को रोक भी नहीं पा रही थी। मिठाई की प्लेट लेकर नीचे उतरने लगी। वैभव ने बहुत शानदार खाना मंगवा के डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था और वैभव के मुंह में दीपाली और मिठाई दोनों को देखकर पानी आ रहा था। खाना खाते हुए दीपाली वैभव से नज़रें चुराती रही और वैभव एक टक उसे निहारता रहा। खाना खाते हुए इधर उधर की सामान्य बातें भी चलती रही। वैभव यही विचार कर रहा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। खाने के बाद दीपाली ने मिठाई की प्लेट उठाकर वैभव के सामने लाते हुए कहा, मुंह मीठा कीजिए। वैभव ने मौका ताड़ते हुए कहा, यार दीपाली मैं तुमसे बड़ा ज़रूर हूँ, पर इतना भी नहीं हूँ कि हम मित्र ना बन सकें, मुझे वैभव कहो। दीपाली ने कहा, जी वैभव मिठाई लो। वैभव के मित्र वाली बात सुनकर उसकी नीयत को भांप कर दीपाली का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। वैभव तो पूरी तरह से इस मौके का लाभ उठाने के लिए ललायत था। दीपाली ने बर्तन समेटे और धोने के लिए सिंक की तरफ बढ़ी। उसके साथ वैभव के किचन में मदद करने के बहाने से आ गया। दीपाली के मना करने के बावजूद वो मदद कराने लगा। बर्तन धोते हुए बीच बीच में दोनों के हाथ आपस में छू जाते तो दीपाली के तन बदन में तरंगे से उठने लगती। वैभव तो ठहरा मर्द, दीपाली के हाथों का स्पर्श सुख से उसकी नस नस में सनसनी हो रही थी। बर्तन साफ करने के बाद वैभव ने दीपाली को रोके रखने की मंशा से चाय बना दी और चाय लेकर डाइनिंग टेबल पर कुर्सी खींच के बैठ गया। वैभव ने हिम्मत बटोरी और दीपाली के हाथ पर हाथ रख दे बोला, दीपाली एक बात कहूँ। दीपाली का पूरा शरीर झनझना गया। उसने वैभव के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने के बाद कहा, कहिए। कहा, दीपाली तुमने कुदरत के इस संयोग पर गौर किया कि कल सुबह ही मेरी पत्नी कोटा गई और आज तुम्हारे पति भी जोधपुर के लिए निकले। उन दोनों के जाने के बाद पीछे से इस सूने घर में सिर्फ हम दोनों हैं। क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि प्रकृति ये चाहती है कि हमें अपनी तन्हाई दूर करते हुए इस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। दीपाली के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो गूंगी गुड़िया सी बैठी सुनती और सोचती रही कि वैभव ने कैसे उसके सामने इतना सब कुछ बोल दिया। वैभव ने कहा, दीपाली मेरी बात का जवाब दो, क्या मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं? क्या हम इस वीराने में बाहर ला सकते हैं? दीपाली ने कहा, आदित्य का फ़ोन आने वाला है, मैं ऊपर जाती हूँ। पीछे से वैभव ने कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। पर दीपाली दौड़कर वैभव के डाइनिंग हॉल के बाहर निकली और ऊपर जाकर पलंग पर लेट गई। उसके कानों में अभी तक वैभव के प्रणय निवेदन के शब्द गूंज रहे थे। सुबह की छोटी सी चूक ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी। उसने आदित्य के बारे में सोचा, जो बहुत खुले विचारों वाला इंसान है। इतना ही नहीं, वह उसको जी जान से चाहता भी है। फिर उसका मन भटकने पर उतारू क्यों है? क्या वो वैभव के प्रणय निवेदन को स्वीकार कर ले? क्या कुछ पलों का आनंद उसके जीवन के तनाव और दुख से नहीं भर देगा? इस पर उसके मन में बहकने वाला तर्क किया कि रोज घर का सादा खाना खाने वाला व्यक्ति जब कभी बाहर चाट पकौड़ी खा लेता है तो क्या घर के खाने का अपमान हो जाता है? क्या एक रात वैभव के साथ गुजार लेने से उसके मन में आदित्य के लिए प्यार कम हो जाएगा? क्या अंतरवासना के पति पत्नी के प्रेम पर आधारित कोई भी कहानी ऐसी है जिसने पाठकों की कामुकता को बढ़ाया हो? जवाब मिलेगा शायद नहीं। वास्तविकता यह है कि विवाहोत्तर संबंधों पर आधारित कहानी ही पाठकों में सनसनी पैदा करती है। फिर कब तक किसी स्त्री का चरित्र केवल चूत के पैमाने से तुलता रहेगा? क्या नए स्वाद की शौकीनी जुबान और विविधता पसंद दिमाग एक ही चेहरे को एक ही जिस्म से कभी ऊब नहीं जाता? इतना तो दीपाली को विश्वास था कि यदि बाद में आदित्य को उसने बता भी दिया तो वो खुले मन से उसकी मन स्थिति को समझते हुए उसके क्षणिक भटकाव को ज़्यादा तूल नहीं देगा। वह सोच रही थी कि लोग ये गलत समझने की औरत की चूत में केवल एक प्राकृतिक सील ही होती है जिसे पहली जुदाई में पति या प्रेमी तोड़ता है। वास्तव में औरत की चूत में नैतिक बंधनों वाली एक सील होती है जिसे पहला गैर मर्द तोड़ता है। कुछ इस तरह की शंका उसे घेरे रहती है। उसे इन आकांक्षाओं से बाहर निकलकर अपने आप को आनंद में डुबो देना चाहिए। अब धीरे धीरे उसका मन भी वैभव की इस बात पर यकीन करने लगा कि कुदरत ने उन दोनों को एक नया आनंद उठाने स्वर्णिम अवसर का प्रदान किया है। दीपाली उठी, बाथरूम में जाकर नहाई और फिर उसने सबसे अधिक सेक्सी पारदर्शी नाइटी पहनी और काम वासना के प्रभाव में बेसुध होकर बढ़ चली अपने जीवन के पहले गैर मर्द वैभव के पास। सीढ़ी उतरते हुए दीपाली ने देखा कि वैभव ने डाइनिंग हॉल वाले दरवाजे को खुला रखा है। जब दीपाली ने दरवाज़ा खोला तो देखा वैभव भी अभी अभी नहाकर बाहर निकला है, केवल लुंगी बांधे बालों में कंघी कर रहा है। वो देखकर दंग थी कि वैभव को कितना विश्वास था कि दीपाली ज़रूर वापस आएगी। कहानी के अगले भाग औरत की चूत की दूसरी सील में पढ़िए कि कैसे वैभव और दीपाली ने इस स्वर्णिम मौके का आनंद उठाया। धन्यवाद।